તારીખ 20/2/1989, પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વચનામૃત, બોલ નંબર 108 અને 109 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 93.
વિશિષ્ટતા ક્યાં और न पुण्य का उपार्जन करने का उद्देश्य भी इस धर्म में है। जैन धर्म में वो प्रवर्तमान ऐसा कहते हैं कि पुण्य को जो धर्म मानते हैं वे केवल भोग को ही चाहते हैं, क्योंकि पुण्य के फल में तो स्वर्गादि के भोग की ही प्राप्ति होती है। पुण्य के फल में ऐसे पाप के फल भी आए बिना नहीं रहते, नहीं चाहते हुए भी पाप के फल आते ही हैं, वैसे ही पुण्य के होते हैं। तो जो केवल पुण्य को चाहते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं कि वो भोग को चाहते हैं, केवल जो पुण्य को चाहते हैं, जो मोक्ष को चाहते हैं, मोक्ष की जिसको रुचि है, आत्म स्वभाव की जिसको रुचि है, उनको मंद पुरुषार्थ के काल में प्रशस्त राग की उत्पत्ति हो और पुण्य मंद हो जाए, वो चाहते नहीं है, वो नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। ये बात तो ऐसी है, इसीलिए इनमें रस नहीं पड़ता। और रस है वही चिकनास है, तो उसका जो अनुभव है वो उतना नहीं पड़ता। जैसे कि हम विचार करें कि जो चरम शरीरी गुणराज होते हैं, जो उसी भव में जाते हैं, ऐसे मुनिराज को छठे गुण स्थान में शुभ गुण तो पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस शुभ के फल को, उदय को भोगना के लिए उसको रोकना पड़े, दूसरा भोग करना पड़े, ऐसा नहीं होता। उदय भाव क्षय हो जाता है, बहुत सी ऐसी प्रकृतियां बन जाती हैं, वैसे ही उनका क्षय हो जाता है, क्योंकि उसका रस ही उतना नहीं हुआ था। जो बंधा तो उसी काल में उसका रस उतना नहीं था, और बाद में भी पुरुषार्थ शुद्धि का तेज होने से, बढ़ने से, वैसे ही उसका रस रसादि जो है वो अपकर्षण हो गए, यानी खत्म हो गए, और वैसे ही वो फिर जाते हैं। तो ऐसे यहाँ तो उतनी बात है, केवल जो जो पुण्य को धर्म मानकर जो प्रवृत्ति करते हैं वो भोग को चाहते हैं, क्योंकि उसके फल में, उसको पुण्य के फल में भोगादि का अवश्य प्राप्ति होगी ही।
पुण्य ने पुण्य माने तो यानी शू इच्छा
है,
पुण्य ने जो पुण्य माने तो ये इच्छा शू रख।
पुण्य को पुण्य माने तो पुण्य को पवित्र माने क्या, ये सवाल है। पुण्य को पुण्य मानना इसका मतलब ही यही है कि ये अपवित्र है, दुखदायक है, और मेरे स्वरूप से, मेरा स्वरूप का विरोध करने वाला विरोधी भाव है स्वरूप से, तो मेरा तो विरोधी है, ऐसे पुण्य को जाने। जब तक पुण्य को यथार्थ स्वरूप में जाना, अगर ऐसा नहीं जाने तो पुण्य को पुण्य जान करके उसको उपाधि किया बिना नहीं रहेगा, अच्छा मान ही लेगा।
ऐसे जीव को भी उस पुण्य का फल तो भोग स्वर्ग आदि ही मिले, जो पुण्य को पुण्य माने या पवित्र माने उसको भी
मिलता है,
पुण्य का फल तो भोग ही मिलेगा,
भोग ही मिलेगा,
ही मिलेगा। ठीक है, इसको भी वही भोगी और स्वर्ग ही,
लेकिन वो शुरू से जागृत है और इनकी दृष्टि चौंकने की नहीं है, तो ये पुण्य का फल मिलेगा भोगादि, उसमें वो फंसेगा नहीं। जैसे समीर दृष्टि यहां से जाते हैं स्वर्ग में, तो वहां पसरा वगैरह बहुत से देवी सब सामग्री होती है पुण्य के उदेगी, लेकिन वो फंसते नहीं वहां, वहां भी इनका अंतर वैराग्य टिकता है, रहता है, उत्पन्न होता है, बढ़ता भी है, उत्पन्न होता है क्या, बढ़ता भी है, ऐसा होता है यहां, वहां भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि सामग्री हुए इसलिए आसक्ति हुए, ये कोई जरूरी चीज नहीं, वहां भी ऐसा होता है। इसका यही कारण है कि जब बंधे थे तब उसको उसका रस नहीं था, और जागृति तो असंग तत्व की चालू ही चालू है, और द्रविलिंगी आदि को तो संयोग दृष्टि पड़ी है, तो वो दृष्टि चालू रही वहां, कहां जहां सामग्री पुण्य की मिली स्वर्ग में वहां भी चालू रही, तो वहां वो फंसता है, और असंग दृष्टि वाला फंसता नहीं, नहीं है, यही फर्क है।
इसलिए इसको व्यवहार धर्म या परंपरा मूल का कारण कह सकते हैं,
इसको कह सकते हैं कि जो उसमें नहीं फंसते उसको, जो फंसते हैं पर उपाधि मानते हैं, इनके लिए तो परंपरा कारण का उपचार भी संभव नहीं, नहीं कर सकते, इनके लिए कर सकते हैं उतनी बात, उपचार के योग्य तो ये परिणाम है जो इसके साथ वो अपनत्व नहीं करते, जो अपनत्व कर लेते हैं, करने लायक मानते हैं उसको, तो उनके परिणाम तो उपचार के लायक भी नहीं है।
इनको परंपरा कारण
एकेंद्रीय
निगोद का कह सकते हैं, ठीक है,
ठीक है,
और इनको मोक्ष का कह सकते हैं,
इनको मोक्ष का कहते हैं, तो उसको निगोद कहते हैं, बिल्कुल है। इस लाइन का डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मैंने टर्मिनस, आखिरी स्टेशन, कि ये निगोद में चला जाएगा, ये सिद्धालय में चला जाएगा, बस दोनों का ये आखिरी अंजाम है। कह नहीं सकते कब किधर चला जाएगा, मुमुक्षु रहेगा कि नहीं रहेगा, कह नहीं सकते, इसलिए इनके लिए ये जोखिम है, अभी जोखिम में है, जहां तक उसने ध्रुव खूंटे को नहीं पकड़ा वहां तक इसकी परिणति के लिए जोखिम है, इसके परिणाम इतने बलवान नहीं है, जो कमजोर परिणाम है उसमें गड़बड़ होने की संभावना है, इतनी बात है, तो उसके लिए कोई नियमबद्ध कोई बात नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। यथार्थ भावना लेकर जाता है तो वो भी वहां जो धर्मात्मा होते हैं ऐसे देवों का संग करता है, उसके संग में जाता है। अगर यहां से कोई सही भावना लेकर गया तो हो सकता है कि वहां वही बहुत से धर्मात्मा गए हैं, उनके संग में जाएं, उनका सत्संग करें, हो सकता है, और उधर भी इधर भी आए, इधर भी धर्मात्मा हुए, मुनिराज हुए, तो इनके पास भी आवे, मृत्यु लोक में भी आते हैं, देवलोक आते हैं, तो ऐसे देव आते हैं कि भले ही मिथ्या दृष्टि हो लेकिन कुछ ठीक योग्यता लेकर के गए हो, तो उनको भी आना होता है, ऐसा नहीं कि सभी सम्यक दृष्टि आते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी बनता है, पर ऐसा भी बनता है कि वहां अगर भावना नहीं रही या सब वर्तमान संदर्भ में तीव्रता हो गई तो फिर वहां लपेट हो जाता है, फंस जाता है, उनके लिए तो कोई नियम नहीं है।
मैं तो सीधा देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि क्षण क्षण अनुकूल संयोग में
इधर ही मुमुक्ष होकर देखा ना महाराज क्या पूछते हो। इधर ही थोड़ा संयोग की अनुकूलताएं दिखने लगती है, थोड़ा धंधा अच्छा चलने लगता है, थोड़ी कमाई अच्छे चलने लगती है, ऐसा प्रलोभन मिलता है तो छोड़ देता है, प्रवृत्ति कम कर देता है, ज्यादा फंसता है प्रवृत्ति में, ऐसा बनता है कि नहीं बनता है। गुरुदेव के जमाने में किसी ने ऐसा पूछा, कोई विदेश से आया होगा, साहब क्या करें, हमारे यहाँ तो जिन मंदिर नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, सत्संग नहीं है, और आजीविका के हिसाब से वहाँ रहना पड़ता है, क्या करें हम। गुरुदेव साहब कहते हैं कि यहाँ क्यों रहते हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ जा तभी पेट भरता है, ऐसा तो नहीं है, तुम मनुष्य पर्याय लेके आए हो, पंचेंद्रिय प्राणी हुआ हो, उतना पुण्य लेके आता आया हो, खाने पीने पेट भरे उतना मिल जाए, उतना पुण्य लेके तो आया ही हो, तो तुम्हें भरोसा होना चाहिए। तो उनको उतनी भावना होनी चाहिए कि जहाँ सत्संग मिले, जहाँ देवगुरु शास्त्र का योग हो, वहाँ ही हम रहें, वहाँ ही निवास बनावे, पर चाहे भी कुछ कर लेंगे, पेट के लिए तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये तो होना ही होना। ऐसा तीव्र मुमुक्षु की तो बात अलग है, लेकिन सामान्य मुमुक्षुता में इतना आना चाहिए,
सामान्य है,
ये तो सामान्य बात है। तीव्र मुमुक्षु तो ऐसा सोचता है कि हम मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम सत्संग को नहीं कम करेंगे, वो तो मृत्यु तक सोच लेते हैं कि उनको मृत्यु तक की परिस्थिति पसंद है, लेकिन सत्संग छोड़ने के हमारे कोई बात नहीं है, इसमें तीव्रता ऐसे भी आ सकती है। परिवार ने भी उसने विचार नहीं किया कि वो भी इनके पुण्य लेकर आए हैं, वो तेरे हिसाब से पेट भरता है, वो बात तो है ही, गलत समझ है, इसे अपने अपने पुण्य लेकर आए, ऐसा नहीं बनता है कि वो चला जाता है और बाकी फिर भूखे मर जाते हैं, कोई
नहीं
ऐसा कोई बनता है जो ऐसा सोचता है कि मेरे हिसाब से सारा परिवार का पेट भरता है, तो उनका पूरा हो जाता है, तो पीछे कोई भूखे मर जाते हैं, ऐसा नहीं, कोई ना कोई व्यवस्था जैसा भी उदय हो वैसे बैठ जाती है और चलता है हर एक का। कभी ऐसा भी हो जाता है, इसको हमने बहुत सा देखा है कि उनके जिंदा रहने में जो परिस्थिति हो, मरने के बाद इससे परिस्थिति अच्छी हो जाती है, इनके उदय है, अपने पूर्व कर्म के उदय से चलते हैं, वो कर देते हैं, वो मान्यता ही मीठी है, उनको तो विकल्प होता है, उपाधि करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, होता है अपने अपने उनको।
अब परिवार वाले को ये समझना है ना कि हमारा तुम ही करते हो, उनको ये समझ लें,
कोई कुछ भी समझे,
वो लड़े भी झगड़े हमको लाए क्यों, शादी क्यों की, ये वो
ये तो वही बात है, दुनिया मेरे लिए चल रही है, दुनिया मेरे लिए चल रही है, नहीं वही बात, दुनिया मेरे लिए चल रही है,
दुनिया मेरे लिए चल रही है, ऐसा वो नहीं, हम तो कर लें
हमारा, वो तो कुछ समझे या परिवार वाले कुछ भी समझे, लेकिन इससे कोई वस्तु स्थिति तो नहीं बदलती, बदलती है क्या,
नहीं बदलती।
अच्छा राग में खड़ा है तो राग तो आएगा ही, तो राग आएगा तो राग के अनुकूल थोड़ी प्रवृत्ति कर ले, वो भी निरसपणे से करे तो कौन उसको रोकता है, कोई ऐसा तो नहीं कहते कि तुम पूरा उसमें उलझ जाओ, ये तो नहीं कहते ने?
अभी तो नहीं कहते
ये तो कहेंगे कि आपको व्यवस्था करनी चाहिए,
प्रवृत्ति, हाँ प्रवृत्ति के लिए व्यवस्था,
प्रवृत्ति करता हूँ, 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा प्रवृत्ति करता हूँ, जो भाग्य में है पूर्व कर्म में वो मिलता है, इसमें तो किसका कोई उपाय तो होता ही नहीं, बस ठीक है। लेकिन उसी वक्त भी उसको करनी जब पड़ती है तो रस नहीं है और करनी है तो रस है, दो अलग चीज है। करना एक बात है, करना पड़े अलग बात है। तो करनी पड़ती है तो ठीक है, करनी पड़े हो सकता है, उसमें कोई इतनी आपत्ति नहीं। और करनी पड़े इसके साथ साथ वो अपना साधन कर सकता है, तो प्रवृत्ति भी करनी पड़े नहीं चाहते हुए भी तो उसके साथ साधन हो ही सकता है। अगर निरस परिणाम से चले उदय में तो अपना साधन हो सकता है, ये समझ आए। और भी तो टाइम है, बाजार तो दिन में खुली रहती है, कोई रात में थोड़ी खुली रहती है। और दिन में भी खाना पीना और भी शरीर की दूसरी दूसरी स्नान करना, लटकती जाना, कपड़े पहनना, ये सब होते है कि नहीं होते, प्रवृत्ति निकलता है कि नहीं निकलता सबके लिए। जितनी भी शारीरिक आवश्यकता है इसके पीछे जब टाइम निकलता है तो आत्मा की आवश्यकता के पीछे टाइम नहीं निकाल सके तो बात भी नहीं है। काम के जो समय है वो भी लिमिटेड है, दिन भर में भी लिमिटेड है। ऑफिस में जाते हैं तो उनमें भी लंच आवर्स मिलते हैं, वो मिलते हैं, सब मिलते हैं। इसके टाइम भी 11 बजे जाना, 10 बजे जाना, कितने बजे छूटना, ये भी होता है। आगे पीछे टाइम तो रहता है, रुचि हो तो काम कर सकता है और वहां भी काम कर सकता है। काम करते करते भी रुचि हो तो उपयोग तो कोई रोक नहीं सकते। ऐसी कोई जबरदस्ती करे भी परिवार वाले तो भी ये काम बाहर की चीज तो नहीं है, अंदर की चीज है। इस काम की तो अंदर की चीज है, तो अंदर में काम करे कौन रोक सकता है।
सवाल तो सत्संग का है ना, वो दूसरे स्थान पर हो।
ठीक है, सत्संग नहीं, सत्संग उतना नहीं मिले है, जितना चाहे उतना नहीं मिले तो भावना रह जाए, ये भी सत्संग के बराबर है। उनकी भावना तो नहीं चली जानी चाहिए। जो सत्संग को चाहते हैं उनको इतने पुण्य योग नहीं हुए तो भावना रहती है बस। तो उनका जो सत्संग के अभाव में होने वाला नुकसान तो नहीं है, इस भावना की उपस्थिति में असत्संग का तो नुकसान नहीं होगा। क्या होता है कि सत्संग नहीं मिलता है तो जीव असत्संग में फंसता है, अपने उदय में या दूसरे संग में फंसता है जो नहीं करने लायक हो। ऐसा के सत्संग, ऐसा के संग कर लेते हैं तो उसमें तो नहीं फंसे। ऐसी बात है,
खुद के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते तो बुद्धि बड़ी है।
हाँ, तो इसका मतलब ये हो कि जिसको करना है उसके लिए तो कोई इतनी कहीं भी वो करता है, जिसको करना नहीं है उसको तो मिले नहीं मिले सब एक ही बात है। रुचि नहीं है इस काम की, जिस काम की रुचि है उसमें उपयोग जावे नहीं जावे रोक नहीं सकते, रोकना चाहे तो भी रोक नहीं सकते। ये विज्ञान है, मनोविज्ञान की ये परिस्थिति है। नहीं, रुचि तो वैसे ही सतत काम करती है, फिर रुचि उपयोग बार बार खींचती है। रुचि तो सतत वर्तती चीज है, तो उपयोग को कभी कभी खींचती है। दोनों में काम तो बनता है, ऐसा है। रुचि हो और उपयोग हो ही नहीं, ये बात नहीं बनती, ये बात नहीं बनती। रुचि हो उनका उपयोग, रुचि खींचती है उसके उपयोग को।
घर में कोई बीमार हो, दूसरी कोई बात, घर में कोई बीमार हो अच्छा कोई दूसरी बात हो, तो ऑफिस में बैठे बैठे भी घर की चिंता और उपयोग में चला ही जाता है।
करता है, जहां भी प्रेम हो, जहां भी उसको लाभ का कारण हो, वहां जावे ही जावे। में हमारे वो चर्चा चली थी प्राणवायु के गर्भ में बैठे थे। तो क्या करे, बीमार हो तो फिर क्या करे, दर्द हो रहा हो, पीड़ा हो, वेदना हो, फिर उसमें तो उपयोग वहाँ ही रहता है, फिर उपयोग नहीं जाता है उसमें, तत्व तत्व के विचार में नहीं चलता है, आत्मा के विषय में नहीं उपयोग काम करता है, फिर तो देह में ही जुड़ा हुआ रहता है। तर्क निकाला किसी ने कि भाई ऐसे वेदना में कोई एक है कि आपको एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, 10-20-25 लाख मिल जाएगा, तो बहुत आपके लिए अच्छा एक मौका आ गया है, आपको ध्यान है कि नहीं है, तो व्रत को भूल जाएगा इस वक्त। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बात है, बोलिए जल्दी बताइए जल्दी, दूसरी दूसरी बात मत करो, जल्दी बताओ बताओ जल्दी, ऐसा करेगा वो तो कहाँ जाएगा दर्द। तो ये पीड़ा में, उपाधि में, व्याधि में भी उपयोग ऐसे तो ले जा सकते हैं ढोंग करके, लेकिन इसको अधिकता मानी है इसकी, इस चीज की, इसलिए। और उसमें कहता हूँ कि हमारा उपयोग तो ये पीड़ा में दर्द में रहता है, क्या करे, व्याधि हो गया ये बड़ा, हमने इसकी अधिकता मानी है अपनी शांति की, और शांति के पिंड रूप आत्मा की अधिकता
नहीं
मानी ही नहीं, ये बात है। माने हो तो उसमें और तेजी से जाएगा। तो बार बार जाएगा, जितनी अधिकता कितनी मानी है उतनी बात है। प्रयत्न करना करने वाला तो हर हालत में प्रयास करता है, और मोक्ष भी इसको कहते हैं, मोक्ष भी इसको कहते हैं कि जिसने शुरू से ही ऐसा निर्णय किया हो, ऐसा अभिप्राय दृढ़ कर लिया हो कि मुझे किसी भी हालत में किसी भी प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, मेरा काम तो मैं हर हालत में करूंगा 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 ही, ऐसा अभिप्राय जिसने बनाया हो, ये मुमुक्ष कि शुरू से ऐसा विचार कर लेता है। इस लाइन में प्रवेश ते ही ये बात तो निर्णय में आ जाती है, प्रवेश काल कि किसी भी प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति संयोग में हो, हर हालत में मैं मेरा काम करने वाला, हर हालत में मैं मेरा काम करूंगा, ऐसी दृढ़ता के साथ ही वो प्रवेश करता है, फिर कोई आपत्ति नहीं है, फिर कोई ये बहाना निकलेगा ही नहीं कि ये हो गया तो क्या, वो हो गया तो क्या, अरे कुछ भी हो गया,
फिर उसको सब अनुकूल परिणाम जाते हैं, फिर उसको सब अनुकूल परिणाम जाते हैं,
सब अनुकूल परिणाम जाते हैं, और परिणाम जाते हैं तो भी गौण है, और अनुकूल नहीं परिणाम जाते तो भी गौण है, बहुत कुछ छोड़ी दे, कोई नहीं करेगा। कृष्ण ने नहीं कहा गुरुदेव को कि ये परिवार है उसका क्या करेंगे, नहीं कहा। दुकान पर जाते थे तो वो भी ग्रंथ लेके जाते थे, पढ़ते थे, अपने संप्रदाय के लेके जाते थे, पढ़ा करते थे, दूसरे दूसरे लोग काम करते थे, इनको कोई इतना कभी मजाक कर लेते कि ये भगत आदमी है ऐसा ही करता रहता है, बस उतनी बात थी, तो इसको परेशान नहीं करते थे। और संप्रदाय जिस वक्त बदला, परिवर्तन का काल आया, उन्होंने अपने भाई से भी पहले बात कही प्राइवेट में कि ये गड़बड़ है इसमें, ये धर्म सत्य नहीं है, स्थानक वासी का संप्रदाय सत्य धर्म नहीं है, और ये दिगंबर सत्य है, मैं तो परिवर्तन करूंगा, इसको छोड़ दूंगा ये कपड़े वपड़े, मोहपति वहां तो मोहपति चिन्ह है इनका संप्रदाय का, मोहपति छोड़ दूंगा। तो उनको बड़े भाई को इतना विश्वास था इनके ऊपर बहुत विश्वास था कि ये जो करता है वो सोच समझ के करता है, बिना विचारवान आदमी है, ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाता कभी, काफी सोचा होगा, इसका विश्वास करके बोले ठीक है तुम छोड़ देना, अपने घर में रोटी की कमी नहीं है, लोग रोटी नहीं देंगे, मुक्ति छोड़ने से संप्रदाय वाले देंगे नहीं, दूसरे संप्रदाय वाले पहचानते नहीं किसके यहाँ लेने को जावे, उनके घर में रोटी की कमी नहीं, तुम आ जाना घर पे और अकेला कमरे में बैठ के या छत पे बैठ के अपना साधन कर लेना, बस ठीक है। वो अकेले निकले थे, उसको कोई समुदाय नहीं था कि इसकी देखभाल करे संभाल करे, ऐसे कोई थे नहीं, और पुण्य था तो उतना बढ़ गया कि कोई सवाल नहीं, इसको बुलाने को नहीं गए कभी, बाहर निकले नहीं,
बड़े भाई ने भी लोक दृष्टि नहीं रखी।
वो भी इतने समझदार थे, लोक दृष्टि नहीं रखी कि समाज में अपना क्या होगा, सारा संप्रदाय हमें क्या करेगा, प्रतिकूलताएं देंगे, वो करेंगे, दबाव आएगा, वो आएगा, मुनियों का दबाव आएगा, सेठिया लोगों का दबाव आएगा, वो आएगा, वो सब पता था कि कुछ भी होगा,
जाति कुछ भी करेंगे,
जो भी करेंगे करो, धर्म के आगे कोई नहीं है, अपने धर्म से और अपने हित से आगे कोई है ही नहीं, और ऐसा बहुत हुआ है। शुरू शुरू में जो लोग स्वामी जी के पिछाड़ी निकले संप्रदाय में से, तो कईयों का बेटे बेटी का जो सगाई है टूट गई, अपने जाति वालों ने तोड़ भी दी, ऐसे लोग अभी जिंदा है कि जिसकी टूटी टूट गई हो, जानते हैं अड़ग रहे विचलित नहीं हुए, टूट गई तो भले ही टूट गई, जो इसका पूर्व कर्म होगा सो होगा लड़के का, मैं तो स्वामी जी को छोड़ने वाला नहीं, और अभी तो रोने लगे साहब हमारा ये हो गया, आप ऐसा मत करो। कोई प्रतिकूलता के वश सत्य मार्ग को छोड़ जाए, उनका अधिकार ही नहीं है इस मार्ग का, ऐसे प्राणियों का, दीन प्राणियों का तो अधिकार नहीं है इस मार्ग में, माने लायक नहीं है इस मार्ग में, ऐसी बात है। यहां तो चलते विषय में जो बात है वो तो पुण्य और पवित्रता दोनों में क्या अंतर है वो कहना चाहते हैं, कि जैन धर्म है वो जीव की पवित्र दशा है, और पुण्य है वो जीव की अपवित्र दशा है, एक धर्म है और एक अधर्म है, धर्म ही नहीं उसको अधर्म कहने में आता है, अधर्म है धर्म ही नहीं,
पुण्य फल अर्हता,
पुण्य फला अर्हंता, तीर्थंकर प्रकृति की बात है, अरहंत के गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में जो पुण्य प्रकृति का उदय आता है, तीर्थंकरों का दूसरों सामान्य के लोगों में उदय आता है, संस्मरण होते हैं, वाणी कीर्ति है, ये सब होता है, यही बात कहने का मतलब है। पवित्र दशा का सवाल नहीं है, पुण्य से कोई पवित्रता प्रकट नहीं, ये बात है। इसलिए जिसको पुण्य की भावना है उसको भोग को ही अर्थात संसार की ही भावना है, किंतु मोक्ष की भावना उसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्ष में है, दोनों की भावना रह नहीं सकती, चाहे पुण्य की भावना करे जीव, मोक्ष की करे, जैसे जिसकी समझदारी, ये 108 होना पड़ा, 109 बोल में दृढ़ दृष्टि का विषय लिया है। दृढ़ दृष्टि वाला अपने अपना तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को ही आश्रय करता है, मुख्य रूप से जानता है, मुख्य करता है, लेकिन दूसरों को भी इनकी त्रिकाली परिस्थिति को मुख्य करते हैं, क्षणिक परिस्थिति को गौण करते हैं, ऐसा शुरू में लिया। पर्याय दृष्टि निकाल करके और दृढ़ दृष्टि प्रकट करके दूसरों को भी द्रव्य दृष्टि से पूर्णानंद प्रभु ही देखते हैं, दूसरों को भी ऐसे ही देखते हैं, उसको वस्तु दृष्टि भी कहते हैं। आनंद जी ने एक बल लिया है, वस्तु गते वस्तु विचारे जो कहने में आता है मूल में तो पर्याय मुंडाहा पर समया, पर समय कह दिया, जैन मत से वो बाहर कर दिया, स्व समय नहीं रहा, पर समय बोल दिया उसको प्रवचन सार में। और मूल में मात्र पर्याय को पूरी वस्तु मान लेने से अपने आप में और दूसरों में भी सभी प्रकार के दोष की परंपरा का मूल यही कारण है। अगर ऐसा दोष नहीं हो तो दूसरे दोष होने की कम गुंजाइश रहती है। तो पूर्ण शुद्ध तो आखिर में होते हैं, लेकिन जो दोष है इनकी जो परिपाटी है बिल्कुल बदल जाती है, कि जो मूल दोष है वो उत्पन्न नहीं होते, फिर उत्तर दोष है क्रमशः घटते घटते बिल्कुल ना साफ हो जाते हैं। इसलिए पर्याय दृष्टि को मिटा करके जिसमें द्रव्य दृष्टि प्रकट की हो वो दूसरों को भी द्रव्य दृष्टि से पूर्णानंद प्रभु ही देखते हैं, दूसरे आत्मा को ही वो इसका मूल स्वरूप को मुख्य रूप से देखते हैं और इनकी वर्तमान स्थिति में कि इसको ऐसा ज्ञान रहता है कि वो बेचारा अपना मूल परमानंद स्वरूप परमात्मा को भूल करके चलता है अपनी वर्तमान दशा में, तो कई प्रकार के उनको दोष अनिवार्य रूप से होते रहते हैं, फिर उसको रोक नहीं सकते। ऐसे जो धर्मी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ऐसे अज्ञानी की दशा का ज्ञान रहता है। क्या
ज्ञान रहता
है? सुगानी जी के पत्र में ये बात आई है कि नंबर का पत्र है, धर्मी और अधर्मी, धर्मी अधर्मी के भी, धर्मी जो होते हैं वो अधर्मी के भी त्रिकाली व वर्तमान दोनों को एक साथ देखता है, उसमें भी उनकी पर्याय की मुख्यता नहीं करते।
एक साथ देखने
में भीतर में जैसे पर्याय की गौणता और द्रव्य स्वभाव की मुख्यता कोई परिस्थिति दूसरे में लागू होती है, तो दूसरों को भी वो पर्याय को मुख्य नहीं करते, द्रव्य को मुख्य करते। गुरुदेव जैन अखबार पढ़ते थे, उसमें कई लोग गालियां भी निकालते थे और कोई पटांग बातें भी लिख देते थे, कुछ पढ़ते पढ़ते ऐसे कभी बोलते थे कि प्रभु तुझको क्या हो गया है, क्या कहते थे,
प्रभु तुझको क्या हो गया,
प्रभु तुझे क्या हो गया है, प्रभु क्या कहते थे उसको। ये तो नजर के सामने देखी हुई बात है, द्वेष नहीं करते थे, कहते थे प्रभु तुझे क्या हो गया है, ये तो कोई करने लायक चीज नहीं है, बस उतनी बात है। धर्मी अधर्मी के भी त्रिकाली व वर्तमान दोनों को एक साथ देखता है। अधर्मी की वर्तमान स्थिति में त्रिकाली का अभाव होने से, जुड़ान नहीं होने से, अधर्मी परिणाम मात्र में एकत्व होता रहता है और इसलिए सभी प्रकार के दोष हो जाते हैं उसके। धर्मी को इसका ज्ञान रहता है, दोष का होना किस लिए हुआ इसका उसको ज्ञान हो जाता है, बस कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा ही हुआ, दूसरा होगा क्या इसे। दूसरों को भी दृढ़ दृष्टि से पूर्णानंद प्रभु ही देखते हैं, फिर किसके साथ वैर और वैमनस्य रखें। जहां स्वरूप से ही परमात्मा है ऐसा देखें, किसके साथ रखें, अवस्था ग्रहण कर देते हैं कि चलो इनकी अवस्था में वो भूले हुए हैं, ऐसा ही करेंगे और क्या करेंगे। पर्याय का ज्ञान करें लेकिन आदरणीय पर्याय का ज्ञान करें, पर्याय का ज्ञान होवे करे मैंने होवे, फिर भी आदरणीय और आश्रय युक्त तो दृष्टि का ही विषय है। दृष्टि के आश्रय में और दृष्टि के आदर में, दृष्टि तो आदर करती है आश्रय करती है, वो तो एक त्रिकाली ध्रुव शुद्ध द्रवी ही है, दूसरा का आश्रय करती नहीं, वो भी अपने अपना जो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध द्रव है उसका ही आश्रय करती है, उसका ही परम आदर करती है। ये तो ज्ञान की प्रधानता से कहा कि दूसरों को ऐसे देखते हैं। दृष्टि का तो विषय ही होता नहीं है, लेकिन दृष्टि का विषय ज्ञान प्रधानता से भी कह सकते हैं, आचरण प्रधानता से भी कह सकते हैं। जैसे वो आदर करने की बात आई तो आदरते हैं उसमें आचरण है, जानते हैं उसमें ज्ञान है, ज्ञान प्रधानता से दृष्टि की बात ऐसी चलती है। अपना एक ही त्रिकाली ध्रुव शुद्ध द्रव है, वही आदर का स्थान है दृष्टि में, तो वही एक आश्रय का स्थान रहता है और उसी के वश फिर जो ज्ञान में परिस्थिति होती है वो तो उसी के अनुसार होती है। ज्ञान में भी आदरणीय तो दृष्टि का विषय, आश्रय का स्थान तो वही का वही, और दूसरों को जान लेते हैं उतनी बात है, सिर्फ जाने, ठीक जाने अठीक जाने वो काम ज्ञान का नहीं है, वो तो जैसा है वैसा जाने। जितना भी गुणस्थान के अनुसार राग रह गया हो उतना चारित्र का इष्ट अनिष्ट पड़ा हो जाएगा, बस साथ में इसका निषेध भी होगा, ये भी साथ में है।
द्रव्य दृष्टि प्रकट करे वो तो ऐसा करता है, अभी हम तो है मुमुक्ष तो हमको भी द्रव्य दृष्टि प्रकट करनी है,
प्रकट करनी है, तो जो द्रव्य जिसकी दृष्टि करनी है उसकी पहचान करे पहले, सबसे पहले तो उसको पहचाने, और पहचानने से जो उल्टी दृष्टि है उसका जोर खत्म होगा, पहले उनकी दृष्टि का जोर टूटेगा पहचानने के कारण, फिर जो ज्ञान बल बढ़ेगा, पहचान तो ज्ञान में होती है, फिर जो ज्ञान बल बढ़ेगा इससे दृष्टि भी पलट जाएगी, ज्ञान पूर्व संतान भी पलट जाएगा, दृष्टि हो जाएगी। तो इसका साधन है पहचान करना, ये इसलिए तो स्वाध्याय बाह्य साधन, स्वाध्याय तो बाह्य साधन है, इसमें कैसे करना इनके न्यायाधिक आते हैं, सिर्फ धारणा करने की चीज नहीं, चलो समझ ले मैं बात खत्म, वो समझी हुई बात वो अपने परिणाम में लागू कैसे करे, इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं। ज्ञान तो समझ तो दो प्रकार से होती है, एक तो थियरी से थोड़ी बात समझ में आती है और फिर इसका प्रयोग करते हैं तो बात सही रूप में समझ में आती है। कल एक चर्चा में विषय चला था कि अज्ञानी क्यों, अज्ञानी से क्यों दूसरों को ज्ञान नहीं होता, चर्चा चली थी अपने आप। यही कारण है कि ये जो अनुभव है या मोक्ष मार्ग है वो तो प्रैक्टिकल ज्ञान का विषय है, थियोरेटिकल ज्ञान का विषय नहीं है, और वो थियोरी सिर्फ बता सकता है, प्रैक्टिकल में तो खुद ही नहीं आया, तो प्रैक्टिकल में क्या चीज होती है वो कैसे बताएगा, और प्रैक्टिकल में प्रयोग में जो चीज आती है वो सब चीज तो कहीं भी नहीं जाती, अनुभव की प्रयोग वाली चीज सब तो वचन गोचर में नहीं है, तो वो कैसे कहेगा, वो बात पूरी कह ही नहीं सकता। मैंने ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पूरी बात तो वचन गोचर है ही नहीं, आती ही नहीं, ऐसी तो परिस्थिति है इस विषय की। जैसे अपन ये रोटी बनाने का दृष्टांत लेते हैं, मैं रोटी बनाने में क्या कि ये जो आटा का ये है लोहा का, थोड़ा पकड़ करके उसको गोल गोल बना देना, फिर तो मामूली है बनाने को, जावे तो पता चले, थ्योरी तो कितनी है, तो आटा में पानी रख दिया, उसको बना दिया पिंड, पिंड में से थोड़ा लोहा ले लिया और उसको रोटी बनाने लगे तो रोटी बन जाएगा, इतनी आसान है क्या रोटी बनाने, नहीं बना सकते। तो थियोरी तो समझ में आती है, इसका मतलब नहीं है कि बात पूरी समझ में आ जाती है, जब कोई बनाता है तो उस वक्त उसकी समझ उसमें लागू होती है, ज्ञान तो वहां भी प्रवृत्ति हो करता है, फिर पता चलता है कि ये बात कितनी कठिन है, जितनी समझी उतनी आसान नहीं है, तो वो बात कैसे कैसे आवे थियोरी में, ये रोटी कैसे बनाना उसकी कोई थ्योरी आ सकती है क्या, थ्योरी में उतना कह सकते हैं कि गोल होनी चाहिए, आधी टेढ़ी नहीं भोजन होनी चाहिए, या एक लेवल की होनी चाहिए, कहीं पतली हो गए कहीं जाड़ी हो गए कहीं उसमें वो पड़ जावे छिद्र पड़ जावे, ऐसे कहीं नहीं होना चाहिए, बस इससे ज्यादा क्या है, फिर भी इसे तो रोटी नहीं बन जाती। तो इसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी वचन गोचर नहीं है, ऐसे स्थूल विषय में भी प्रैक्टिस का विषय तो वचन गोचर होता ही नहीं, इसलिए तो जहां जिम्मेवारी की पोस्ट होती है नॉन प्रैक्टिकल साइड में पहले आना पड़ता है, जैसे डॉक्टर होते हैं, मरीज का जिंदगी का सवाल है पेशेंट का, तो उसको 2 साल इंटर्नशिप करना पड़ता है, प्रैक्टिस करो 2 साल, हॉस्पिटल में जाओ, बड़े बड़े डॉक्टर के नीचे हाथ नीचे काम करो, उनकी सलाह के अनुसार काम करो, जब उनको डिग्री मिलती है कि अब तुम कहीं भी दुकान लगाते हो बाजार में बैठ सकते हो, इसके पहले अलाउ नहीं करते, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्या कारण है इसके पीछे, कि इसका जो प्रैक्टिकल ज्ञान का जो महत्व है ये महत्व वहां समझा जाता है और उसका कोई उपाय सिवा प्रैक्टिस कोई उपाय नहीं इसका, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं इसका दूसरा, यहाँ भी यही हालत है। इसलिए वो नहीं बता सकता, नहीं कह सकता, दूसरा इससे ज्ञानी नहीं हो सकता। इसका यही कारण है कि मूल चीज ही नहीं आती। कहां से सीखेगा कोई? कहीं कहीं वो उसने बोला और उसने सीख लिया कि ये बात संभव नहीं है, कहता ही संभव नहीं, कुछ चीज ही मानी आई, क्या क्या सीखा, कैसे सीखा, सीख ही नहीं सकता। यही कारण है इसका। इसलिए जो द्रव्य दृष्टि है इससे दूसरों के प्रति के जो परिणाम है उसमें बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है, बहुत बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है कि दूसरों को भी वो मूल स्वरूप से देखता है उतना ही नहीं। यहाँ तो थोड़ी बात आई है गुरुदेव के प्रवचन में, तो और भी बात आ गई थी कि वो परमाणु को भी ऐसे ही देखते हैं, पर्याय प्रधानता से नहीं देखते हैं। इसलिए न तो उनको मिठाई की आसक्ति है और न विष्टा की घृणा है, क्योंकि ये तो एक ही परमाणु की दो अवस्था है कि जो मिठाई है 6 घंटे के पास उसी का उसी की अवस्था विष्टा की है। परमाणु नहीं बदले, अवस्था बदली है, परमाणुओं की है। तो जो द्रव्य दृष्टि से देखते हैं इनको राग द्वेष और व्यामोह होता नहीं, क्योंकि पर्याय की प्रधानता नहीं है। परमाणु में भी पर्याय की प्रधानता होने से ही व्यामोह होता है। पर्याय मात्र रूप जो उदाहरण करता है पर परमाणु को, उनको व्यामोह हो जाता है। यह तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। वास्तव में रजकण और रिद्धि वैमानिक देव की सर्वे मान्या, हाँ मान्या ऐसा शब्द लिया है, सर्वे मान्या पुद गले एक स्वभाव, मान्य में एक बात है, दृष्टि में एक सी बात है, तो जो भी है सब पुद्गल है, पुद्गल ही पुद्गल है, कोई विशेषता परिणम में कैसे भी परिस्थिति हो पुद्गल ही पुद्गल उसको देखते हैं, परिणम की विशेषता को नहीं देखते, गौण कर देते हैं, बस बात खत्म हो गई। दूसरे जीव में और दूसरे परमाणु में मूल स्वरूप की दृष्टि रहने का यही कारण है कि अपने मूल स्वरूप की दृष्टि हुई है भीतर में।
वाह,
यही कारण है इसका।
वही रह सकता है,
वही रह सकता है। यहां से जो खिसक गया सब जगह से खिसक जाएगा।
जो धूल कहते थे उसके पीछे ये कारण है, गुरुदेव जो धूल कहते थे,
धूल,
हाँ यही कारण है। पैसे को धूल ही धूल कहते थे। सुगानी जी का मान मान मिले नहीं मिले सब धूल ही
धूल है।
पैसे वाले भी मान के पीछे मृत मरते हैं। गुल में आया है तो मान मिले नहीं मिले सब धूल ही
धूल
है। पैसा भी धूल और कीर्ति भी धूल, दोनों को धूल बता दिया। यही कारण है इसका। वो तो परमाणु रूप में देखते हैं पुद्गल पुद्गल, बस कोई इससे ज्यादा कोई विशेषता ही नहीं देखे, इतना गौण कर दे।
जैसे ज्ञानी के वचन में, वैसे ज्ञानियों के वचन में कितना गंभीरता रहती है।
बहुत सारे विश्व को जीव और अजीव जो विश्व के पदार्थ हैं सारे विश्व को एक दृष्टि में बांध लिया, एक ही दृष्टि में वो सब आई गए, इतनी गंभीरता है। और इसका फल परिपूर्ण सिद्ध दशा, यही बताया है कि सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में जो अनसादि अनंत काल पर्यंत टिके हुए है इसी का कारण इनका सम्यक दर्शन है।
श्रद्धा के बल पर,
श्रद्धा के बल पर वो टिके हुए हैं। टोडरमल जी ने लिया रसिक पुरानी चिट्ठी में, सिद्ध दशा में सादि अनंत काल क्यों रहे, यही कारण है इसका कि इनके पास दृष्टि है। अगर दृष्टि नहीं होती तो ये संभव नहीं। ये बात है इसमें क्या गंभीरता है। देखो भगवान कुंडकुंड आचार्य ने ये सूत्र दिया अष्टपाहुर में दंशन मूलो धम्मो, बहुत गंभीरता है इसमें कि एक दंशन होने से, द्रव का दर्शन होने से जो परिस्थिति पलटती है, मानो के सारे द्रव को वो पलटाती हो, अनंत गुणों का विकास का यही कारण हो, ऐसी कोई इनकी कार्य करने की इस गुण की जो पद्धति देख करके उसको उपमा दे दी मूल की, दंशन मूलो, मूल की उपमा दे दी। ऐसे वृक्ष में ऐसे देखे जाते हैं कि कितना भी बड़ा वृक्ष हो लेकिन जिसका मूल कमजोर वो तूफान में उखड़ जाते हैं, और छोटा भी हो लेकिन तूफान में नहीं उखड़ जाते, इसका क्या कारण? बड़ा हो तो उसकी ताकत भी बड़ी होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। जिसका मूल कमजोर है वो उखड़ जाते हैं, जिसका मूल मजबूत है वो तूफान में टिके रहते हैं। ऐसे एक दंशन है, इसको मूल की रूपमा देने का यही कारण है। द्रव दृष्टि को ज्ञान है, चारित्र है, आनंद है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रभुत्व है, विभुत्व है, बहुत से स्वच्छत्व आदि बहुत से गुण है, अनंत है। एक दर्शन को ही मूल की उपमा मिली है, दूसरे को नहीं मिली है, न चारित्र को मिली न ज्ञान को मिली, या ज्ञान तो प्रधान गुण है फिर भी नहीं मिली उसको। ये कारण है कि सारे जो ताकत है ये दृष्टि के दौरान काम करती है, यही कारण है। जीव की जो वीर्य शक्ति है उसको अगर कोई मोड़ मिलता है या उसको कोई प्रवृत्ति मिलती है तो इसका मूल यह है, दृष्टि है, इसका मूल दृष्टि है। और ये पुरुषार्थ से सिद्धि, साध्य की सिद्धि है, बिना पुरुषार्थ साध्य की सिद्धि है ही नहीं मोक्ष मार्ग में। तो
पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बार क्षमावणी के दिन ये कहा था कि हम तो सबको स्वभाव दृष्टि से ही देखते हैं, द्रव्य दृष्टि से ही, और किसी को कदाचित पर्याय से देख लिया हो तो ये किसी को कदाचित पर्याय से देख लिया हो, इसका अर्थ खुला सकते
नहीं। कभी मुख्यता किसी की हो देख लिया उनका मतलब दृष्टि तो दूसरे को देखती नहीं,
ये तो खुला सकते।
लेकिन ज्ञान में प्रयोजनवश मुख्य कौन होता है, जैसे निश्चय ही मुख्य है फिर भी प्रयोजनवश व्यवहार की भी मुख्यता आती है,
वो भी उनको नहीं सुहाती थी,
सुहाती नहीं थी, तो प्रयोजनवश कभी करना पड़ा हो तो भी हम माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं।
दृष्टि में तो कभी देखा ही नहीं,
देखे ही नहीं कभी, उसमें तो कोई फर्क होने का सवाल ही नहीं,
निरंतर वो तो।
हाँ, माँ अपने बेटे को मारती भी है क्या? नहीं मारती क्या? इसके लिए कोई ये नहीं कह सकते कि उनकी माँ नहीं है, कोई दुश्मन है, ऐसा कोई
नहीं कह
सकते। मारती है इसलिए दुश्मन थोड़ी हो जाती क्या? ये नहीं कह सकता। ये संतुलन है इसमें, मारती है तो भी संतुलन है कि नहीं? प्रेम का संतुलन है इसका, संतुलन खोते नहीं कभी। ये चीज है कि दृष्टि कोई बदलती नहीं, चाहे उसको प्रभु करके व्यवहार नहीं किया, नहीं भी करे, फिर भी दृष्टि तो वही रहती है, उसमें कोई फर्क होता ही नहीं कभी। वो 14 कलश है समय सार में,
पशु
परिशिष्ट में, तो एक एक 14 कलश में पशु कहा है। अनेकांत दृष्टि वाला ज्ञानी जिंदा रहता है और पशु मरता है, ऐसी बात आती है, पशु कह करके मरता है ऐसा कहते हैं, यही कारण है इसका। वो कोई वहां कषाय बस बात नहीं चली, पशु कह दिया इसलिए, मरने का कह दिया इसलिए, कोई कषाय आ गई है आचार्य देव को, ये बात नहीं। करुणा से ऐसे कहते हैं, ये भी करुणा का करुणा है इसके पीछे, प्रेम है इसके पीछे, कि इसका अहित न हो और इसका हित ही हो, बस उतनी बात है, दृष्टि कभी नहीं बदलती। ऐसे दृढ़ दृष्टि की जो प्रधानता है वो इतनी जबरदस्त है। और इसलिए कहीं ऐसा भी कहने में आता है कि ज्ञान दृष्टि होने से ही बदलता है, दृष्टि होने पर जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का दृष्टिकोण अलग ही रहता है। इसको ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, इसको ही सम्यक का विशेषण लगता है। अगर दृष्टि नहीं है तो ज्ञान को सम्यक का विशेषण नहीं मिलता है, चाहे कितना भी दिखाओ अच्छा दिखता है तो भी। ऐसा ऐसी इनकी प्रधानता करने के पीछे कुछ तथ्य है। दृष्टि की प्रधानता करने के पीछे कोई रहस्य है, कोई तथ्य पड़ा है, वो तो क्या है, कैसा है, इसकी गहराई में जाके समझना चाहिए कि क्या क्या बात है इसके पीछे। बहुत गंभीर चीज है। सर्वथा तो ये जिसको दृष्टि प्राप्त होती है उसको अनुभव गोचर होता है, और ये बहुत सा विषय तो अनुभव गोचर है। फिर भी जो भी वचन गोचर, जितना भी वचन गोचर है, उनके जो अलग अलग पहलू हैं, इससे इसकी कितनी कीमत है ये समझ सकते हैं।
ये छाई सम्यक तो चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट हो सकता है, हो जाता है, है ना, छाई सम्यक
हो सकता है।
तो ये श्रद्धा का जो मूल है, धर्म का जो मूल श्रद्धा, वो चतुर्थ गुण स्थान में ही हो गई। फिर भी इसको सिद्ध अवस्था में ये कहा कि इसके बल पर टिकते हैं, तो वो तो चतुर्थ गुण स्थान में ही प्रकट हो गया। जो बीच की स्टेज हैं और हैं उनके लिए भी इसको ही मूल कैसे कहते हैं?
नहीं, वो तो आएगी बीच में, सिद्ध अवस्था इससे टिकती है तो दूसरी को तो आएगी बीच में।
उसमें सिद्ध अवस्था में इसको क्यों कहा जबकि ये चौथे में ही हो जाता है?
नहीं, ये प्रश्न महत्व ये दर्शाने का है कि अगर सिद्ध अवस्था सादी अनंत काल टिकती है क्यों, कि ये सम्यक दर्शन की वजह से।
तो सम्यक दर्शन वहां थोड़ी प्रकट होता है?
नहीं, सम्यक दर्शन पहले हो गया, हुआ तो पहले, लेकिन जो आखिर की पूर्ण अंतिम दशा है, जिसके आगे अभी कोई दशा नहीं है, ऐसी जो पूर्ण दशा है वो सादी अनंत काल रहने का मूल कारण क्या?
चारित्र।
तो जो पहले सम्यक दर्शन हुआ था वही कारण, चारित्र को नहीं बताया, ये इसका रहस्य है। इसके पीछे कोई इसकी महत्ता समझने की बात तो यही है, ये कोई मामूली बात नहीं कही, बहुत रहस्य गर्भित बात किया है सम्यक दर्शन के विषय में। ये जो दंशन बोलो धम्मो कही है, इनकी विशेषता कही पंडितों ने, ज्ञानियों ने, आचार्य महाराज ने ये बात कही है, तो वाकई कुछ इसमें बहुत दम है। अरे सिद्धालय में सीधा शादी अनंत काल क्यों रहता है, कि ये कारण सम्यक दर्शन का है, पिछली वाली अवस्थाओं का नहीं बताया, ये कारण है। बहुत बड़ी बात है, समझने लायक से।
यहाँ तक